ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
சத்கன் சித்கன் ஆனந்தகன் கல்யாண குணகண நிலை அவ்யக்தாசி சர்வேஸ்வர் ஜெகத் நியந்தா ஜெகதாதார் கருணா வருணாலய் பிரபு கி அசீம் அஹிது கி கபா கே சாத் ஹம் சப் லோக் பேட் கர் விசார் கர் ரஹே தே கல் ஈஷா வாசவிதம் சர்வம் யத் கிஞ்சித் ஜக்தாங் ஜகத் தேன தக்தேன புஞ்சிதா மாகிருதி கஷ்ட சதம். यह संपूर्ण जगत भगवत स्वरूप है. ज्ञानी जगत को आत्मभाव से आत्मदृष्टि से देखता है, उसे स्वस्वरूप आत्मा से अलग कुछ नहीं दिखाई पड़ता. सर्व जगत स्वरूप आत्मा और आत्मस्वरूप सर्व जगत, इस प्रकार आत्मदृष्टि से देखने वाला ज्ञानी जो इस जगत को रहता है, तेन तत्तेन भुंजिता, वह इस शरीर, यद्यपि शरीर की पालना त्याग पूर्वक करता हुआ जीवन यापन, तक्तेन भुंजिता, कहीं कोई उसकी आसक्ति नहीं है, असंग है, अलिप्त है और निर्द्वंद है, इस प्रकार वह जीवन का असंगता पूर्वक, निर्लिप्तता पूर्वक, अनाशक्ति पूर्वक वह शरीर की का निर्वाह करता है, पालन करता है. और मां कश्चित् धनम्, उसे कहीं कोई इच्छा नहीं है, धन की चाह नहीं. धन अर्थात यह किसका है, उसके अंदर धन की प्राप्ति की कहीं कोई चाहना नहीं है. ऐसी जो दृष्टि है, बहुत संत कहते हैं कि यह भाव तो केवल एक योगी सन्यासी जो आत्मज्ञानी तत्ववेता है उसके लिए ये भाव है, उसकी ये स्थिति है. परंतु दूसरे मंत्र में कुर्वन्नेह कर्माणि, यदि वो आत्मदृष्टि नहीं हो सकती है, देहाभिमानी है, उसे अपने शरीर में मैं हूं इस प्रकार के शरीर के साथ, शरीर देह बुद्धि में स्वशरीरास्मरण है, देहा अभिमानी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए. बोले कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिझामि सदगुण समा. कर्म करता हुआ, कर्म केवल कर्म के लिए करे, इस लोक में कर्म करते हुए जीने की इच्छा करे, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक के जीने की इच्छा करे. एवं त्वयि नान्यथास्ति न कर्म लिप्यते न राह. इसके अतिरिक्त उसके लिए फिर कर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग है नहीं, इसके सिवा कोई उसके लिए दूसरा मार्ग नहीं है. बोले यही उसका मार्ग है, कर्म करता हुआ, कर्म केवल कर्म के लिए हो. कल मैंने चर्चा की थी कि हम कर किसके लिए हैं, मैं किसका, मैं किसका, और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जिसके अपने को समझते हैं हम उसी के लिए कर रहे हैं. तो जो भगवत जन हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि भगवत तत्व पर है, विचार पर है, उन साधकों के लिए वो जो कुछ भी करते हैं, बोले केवल ईश्वर पराण होकर, भगवत बुद्धि करके. क्योंकि कर्म करते हुए वो कर्मा अभिमान से रहित कैसे हो सकते हैं, कर्म करते हुए कर्तृत्व पन का भान तो होता ही मैं करने वाला हूँ, ऐसा कर्तृत्व बुद्धि कर्म के अंदर आ जाती है। बोले ये कर्तृत्व बुद्धि ही हमें कर्मा अभिमान में बांधती है और इस कर्तृत्व बुद्धि के कारण ही, इस कर्मा अभिमान के कारण ही व्यक्ति को बंधन का कारण बन जाता है उसके लिए। तब संत शास्त्र ये कहते हैं, ईशावास्य ये कहती है कि हमें इस कर्तृत्व के अभिमान से रहित होने के लिए तो अपने को कर्ता न मान करके मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, अर्थात भगवत बुद्धि करके, ईश्वर प्राण होकर, उनकी प्रेरणा समझ करके, केवल कर्म में मेरा अधिकार है, कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है। इस प्रकार कर्म के मार्ग के अतिरिक्त एव त्वयि नान्यथेष्टास्ति, इसके अतिरिक्त उसके लिए कोई दूसरा मार्ग बचता नहीं है। कर्माभिमान बोले इंद्रियाभिमान है, कर्मेंद्रियों का अभिमान है, बुद्धि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां अपना अभिमान रखती हैं कि मैं आंख कहती है मैं देखती हूँ, कान कहते हैं मैं सुनता हूँ, रसना कहती है कि मैं रस लेती हूँ, बुद्धि कहती है मैं निर्णय लेती हूँ, मन कहता है मैं मनन करता हूँ। सब इंद्रियों को अपने अपने कर्तृत्व का जो वो करती हैं उस अभिमान से युक्त हैं कि मैं करने वाली हूँ। बोले इस कर्तृत्व अभिमान से इन इंद्रियों को कैसे अलग किया जाए? आंखें कहती हैं कि मैं देखती हूँ, बोले आंख देखती है परंतु आंख के पीछे बैठ करके देखने वाला जो चेतन है वो इन आंखों से अलग है। यदि आंखें ही देखती तो आंख तो जब धरती के ऊपर शरीर लेटा होता है तब आंख तो उसके पास होती है पर दिखाई नहीं देता, कान तो होते हैं पर सुनाई नहीं पड़ता, और उसके शरीर से उसकी इंद्रियां कहीं जाती नहीं है, वो इंद्रियां शरीर में रहती हैं परंतु वो निष्क्रिय होती हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। बोले उन सब में क्रिया क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि प्राण निकल गए हैं और प्राण जो शरीर में संचालित हो रहे हैं, इन प्राणों का संचालन करने वाली जो चेतना है, जिससे यद्यपि प्राण को आत्मा के अन्निकट माना गया है परंतु प्राणों को भी चेतनता प्रदान करने वाला चेतन तो इस शरीर से अलग है, तो इसलिए इन इंद्रियों को का एक, एक अपनी अपनी एक गाथा है, इसीलिए इन्हें कहा इंद्रिय ग्राम, ये इंद्रियों का एक गांव कहलाता है। हर इंद्रिय की अपनी बात है, अपनी कथा है, और इंद्रिय विघात इन इंद्रियों की एक बड़ी सी कथा है, और सब इंद्रियां अपनी अपनी बातों को कहती हैं, और इंद्रियों की बातों को मान करके, सुन करके, और इंद्रिय जन्यक जो इनका अपना अनुभव है, ज्ञान है, बोले वो सब अपूर्णता का है, क्योंकि इंद्रिय एक ही विषय के विषय में ज्ञान रख सकती हैं, दूसरे विषय में उसे ज्ञान नहीं होता। आंखों के पास केवल देखने की बात है, उसके अतिरिक्त दूसरा उसको ज्ञान नहीं है। कानों के पास केवल सुनने की बात है, देखने का ज्ञान कानों के पास नहीं है। इसलिए इसी प्रकार हर इंद्रिय का ज्ञान अपूर्ण है, और उस अपूर्ण ज्ञान का उसे अपने आप में बड़ा भारी अभिमान है। इसीलिए कहा देहा अभिमानी, इंद्रियों का अभिमान जो लेकर के संसार में जो लोग चल रहे हैं, उन लोगों को इस जो इंद्रिय अभिमान को लेकर चलने वाले हैं, उन लोगों को निषद कहते हैं, उन अज्ञानियों के लिए एक ही मार्ग बचता है। वो मार्ग क्या है? बोले कर्म का मार्ग। कर्म का मार्ग यह है कि इंद्रियां अपने अपने कर्तृत्व कर्म को करती हुई 100 साल तक जीने की इच्छा इस लोक में, शरीर को निष्क्रिय नहीं, जब तक है ये इन इंद्रियां अपने आप में कार्य करती हुई, इनके कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर के सिवा इन सब के पीछे मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए मुझे कार्य करना है, ये सोचकर इंद्रियों से वो कार्य करे निराभिमानी होकर। और निराभिमानी होकर कार्य करता हुआ वो व्यक्ति अपने स्वस्वरूप के कर्म में उसे कहीं भी लिपा न में कर्म लिपित, कर्म में लिपायमान न हो, कर्म के अंदर आसक्ति न हो। यदि कर्माशक्ति उसके अंदर में होगी तो वो संसार में बद्धता चला जाएगा। इसलिए कहा कि निर्लिप्त भाव से कर्म लिपते न रह, कर्म में लिपायमान न हो, ये उपनिषद कहती। कल मैंने कहा था कि सात्विक कर्ता के रूप पर, राजस और तामस कर्ता बनकर नहीं, सात्विक कर्ता के रूप पर हम कार्य करें। और उपनिषद कहती यदि ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, तीसरे मंत्र में, तीसरे मंत्र में बताया यदि ऐसा नहीं होगा तो असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रतिज्ञाद्वि गच्छति ये के चात्महनोजन, अर्थात असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता, असुर शब्द प्रयोग हुआ, माने असुर जहां अंधकार है, सुर जहां प्रकाश है। सुर कहते हैं देवता को, असुर कहते हैं राक्षसों को। बोलिए सुर असुर क्या है, यदि हम अध्यात्म की दृष्टि से विचार करें तो सुर ज्ञानेन्द्रियां हैं, असुर हमारी कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों को चलाया जाता है, वह इंद्रियां कर्मेंद्रियां अपने आप से उन्हें कर्म नहीं करती हैं, और ज्ञानेन्द्रियां कर्म करती हैं, आंख देखती हैं, कान सुनते हैं। इन इंद्रियों के विषय में अपने अपने विषय पर ज्ञान है, परंतु जो कर्मेंद्रियां हैं वो ज्ञानेन्द्रियां जैसा चलाती हैं वैसे ये कर्मेंद्रियां चलती हैं। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता, माने जिन्होंने इन श्लोक में आत्मा के दर्शन के बिना अंधकार से आच्छादित जो लोग हैं, माने जहां अंधकार भरा हुआ है ऐसे अंधकारमय लोक में उन लोगों को जाकर गिरना पड़ता है। मरने के बाद उन्हें उस लोक की प्राप्ति होती है जहां अंधकार से भरा हुआ हो। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता, जहां अंधकार से भरा हुआ है। बोले कौन किनको, आत्महनोजना, जिन्होंने इस आत्मा को, इस शरीर को प्राप्त करके इस आत्मा को नहीं पहचाना, और जिसने इस आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं किया, ऐसे आत्मघाती जनों को। बोले आत्मघाती कौन है, आत्मा तो मरती ही नहीं है, तो घात कैसा उसका, जिसका जन्म ही नहीं है उसका मरण कैसा। बोले आत्मा कभी मरती नहीं है, वो तो शाश्वत है, अजो नित्यो शाश्वतम, वो नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तब उसका घात कैसा। बोले घात यही है कि हम अन्य धर्म को, अन्य के धर्म को अन्य में आरोपित कर देते हैं, वही घात कहलाया गया। जैसे इंद्रियों का धर्म हम आत्मा पर आरोपित कर देते हैं, जिस तरह से भूख लगना, प्यास लगना, ये प्राणों का धर्म है। सर्दी गर्मी का अनुभव करना ये शरीर का धर्म है, और कानों का धर्म, आंखों का धर्म, ये अलग अलग है, सबका धर्म अलग है। हमारे शरीर की षट उर्मियां, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, ये सब मन का धर्म है। तो हम क्या कहते हैं, मेरा मन आज बड़ा ही, किसी कोई बात होती, मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, और ये होता मन दुखी है, पर कहते क्या है हम लोग सामान्य, मैं बड़ा दुखी इंसान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं बड़ा अप्रसन्न हूँ, मैं खिन्न हूँ। हम ये सुख दुख जो दोनों धर्म हैं, मन के हैं, उस धर्म को अपने स्वरूप में आरोपित कर लेते हैं और अपने स्वरूप में आरोपित क्या करके क्या कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं। मैं रूप तो आत्मा का है, मैं तो अपना स्वरूप है, मैं तो कभी सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, मैं पर कोई सुख दुख व्याप्त नहीं हो सकता, छू नहीं सकता सुख दुख को। जैसे उदाहरण के लिए आसमान में बादल दिखाई पड़ते हैं तो हम लोग कहते हैं आज तो भगवान सूर्य नारायण उदय ही नहीं हो रहे हैं, उनका दर्शन ही नहीं हो रहा है, उस भगवान सूर्य को बादल ने ढका हुआ है, सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा है। यद्यपि बादल और सूर्य में बहुत अंतर है, सूर्य बादलों की ताकत नहीं है कि वो सूर्य को ढक सके, पर बोलने में हम लोग क्या कहते हैं आज बादलों में सूर्य छुपे हुए हैं, बादल ने आकर सूर्य को छुपा दिया, सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। तो पर अब यहाँ बादलों का धर्म हमने सूर्य पर आरोपित कर दिया, ढकना किसका काम है, बोले बादल का काम है, परंतु हमने सूर्य के ऊपर आरोपित कर दिया। उसी तरह से देह के धर्म को, इंद्रिय के धर्म को, प्राण के धर्म को, मन के धर्म को हम अपने आत्मा पर आरोपित कर देते हैं और तब हम कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इस प्रकार जो मैं शब्द पर हम ये अन्य का धर्म अन्य पर आरोपित करते हैं, यही आत्मघात है। इसी को कहा आत्मघातो जना, वही आत्मघाती लोग हैं। और उन आत्मघाती लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, बोले बहुत लोग सुखी होने के लिए बस मैं मर जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा समझ करके कुछ लोग संसार की परिस्थितियों से, वातावरण से दुखी होकर के, खिन्न होकर के घात कर लेते हैं, मर जाते हैं। मर जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसने तो आत्मघात कर दिया। हम आत्मघात का मतलब यही सोचते हैं कि कोई आत्महत्या कर ले, मर जाए, उसे आत्महत्या ही कहा जाता है। तो इस प्रकार मर करके सुखी हो जाएंगे, बोले मर करके कोई सुखी हुआ ही नहीं, कोई सुखी हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, बोले मर के तो उसे और ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ जो प्रारब्ध उसका बच गया, उस पाप के साथ और पाप जुड़ गया, उसने आत्मघात जो किया, इसलिए और उसे दुख मिलेगा। अंधेन तमसाव्रता, उपनिषद कहती असूरिया नामते लोका अंधेन तमसाव्रता तास्ते प्रतिज्ञात्मनि गच्छति ये के चात्महनो जना। उन लोगों को, बोले कौन से लोगों को, जो लोग आत्मघाती होते हैं, माने अन्य के धर्म को अन्य पर, ये हम आत्मघात ही कर रहे हैं। क्या आत्मघात कर रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं अप्रसन्न हूँ। ये जो शब्द हम बोलते हैं, इस बोलने में मैं तो कहते हैं, पर ये मैं हमारा क्या मैं है, कौन सा मैं है। सामान्य मैं अभिमान सूचक होता है, इसलिए सामान्य मैं ऐसा नहीं कि मैं को समझना है नारायण, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने समझा, जो हम बार बार बात बात में मैं करते रहते हैं। तो ये मैं जो हमारी है, ये मैं वास्तव में क्या मैं है। एक तो व्यवहारिक मैं है, केवल व्यवहार में, आप बाह्य रूप से व्यवहार में उसे मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और एक मैं है जो आपका अभिमान सूचक मैं है कि मैं माने एक अहम है, अहम में वृत्ति आरूढ़ हो गई, जिसे अहंकार कहते हैं, उस प्रतिज्ञा आदमी उस मैं में अहंकार में वृत्ति आरूढ़ होकर मैं बनकर बोलती है। एक वो मैं है और एक मैं है स्वरूप भूत में। मैं कौन, आप विचार करने के लिए बैठे, आप जब विचार काल में मैं को समझने के लिए बैठते हैं तो प्रश्न होता है क्या मैं ये हूं जो मैं दिख रहा हूं, माने स्थूल शरीर। उत्तर मिला ये भी नहीं। और तब मैं क्या सूक्ष्म शरीर हूं? बोले विचार काल में विचार किया तो वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। फिर क्या मैं कारण शरीर हूं? बोले ना, कारण शरीर भी नहीं, ये भी नहीं है। तब मैं पंच प्राण हूं? बोले ना, पंच प्राण भी नहीं। तब मैं पंच कोश हूं? पंच कोश भी नहीं। तब मैं पंच भूत हूं? वो भी नहीं। पंच तत्व हूं? बोले वो भी नहीं। और तब मैं क्या मन हूं? बोले ना। बुद्धि हूं? ना। अहंकार हूं? बोले ना। तो आखिर में बचा क्या? ना 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 करते करते आखिर में बचा क्या? बचा केवल मैं ये भी नहीं हूं, हूं मात्र बचा। उसमें उस हूं का कोई आकार नहीं है, केवल एक अनुभूति है। और वो अनुभूति क्या है? बोले आनंद स्वरूप, जिसमें केवल स्वस्वरूपानुभूति, अपने स्वरूप की आनंद की अनुभूति। और वो अनुभूति स्वरूप जो बोला, वो क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि, मैं बोला। कि मैं कौन हूं? बोले ब्रह्म स्वरूप। ऐसा वो बोलता नहीं है, ऐसा वो अनुभव करता है। उसका वहां कोई आकार नहीं है, एक मैं स्वस्वरूप में मैं है। मैं की अनुभूति ब्रह्म के रूप में, तत्व के रूप में, वह तत्ववेता केवल अनुभव करता है। और अनुभव बोलकर होने पर वह शब्द से जो प्रकट होता है, वो केवल उसका ब्रह्म स्वरूप का अनुभव मात्र वहां बसता है। एक मैं वो है। तो वो जो मैं है, अच्छा मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, आखिर हूं कहने वाला, मैं ये नहीं हूं, हूं कहने वाला है कि अनुभूति तो रहती है ना। तो मैं ये भी नहीं, ऐसा बोलने वाला जो मैं है वह आत्मा है। और एक मैं, दूसरा सामान्य जो मैं है, हम जो बात बात में बोलते हैं, व्यवहारिक सत्ता में मैं, क्योंकि व्यवहार में तो मैंने खाना खाया, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था। अब ये थोड़ी बोलोगे, बोलने में तो बोलचाल की भाषा में जो एक व्यवहारिक सत्ता है, वो स्वयं के लिए अपनी उपस्थिति को प्रकट करने के लिए आपको मैं शब्द का प्रयोग करना ही होगा। वो आप मैं प्रयोग करें, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। चिंता वाली बात ये है कि वो जो मैं है ना आपके अंदर, वो अहम में वृत्ति आरूढ़ मैं, जो भीतर में अहम एक अहंकार की भावना प्रकट करती है, वो अभिमान जाहिर करती है। वो अभिमान का त्याग करने के लिए कहा, इसलिए मैं को त्यागो। तो इंद्रियों में जो मैं भाव है, उस मैं भाव को यदि सूझे बिना, समझे बिना, केवल इन इंद्रियों के साथ चल रहेंगे हम, और उस मैं का आरोप हम अपने स्वरूप में करेंगे, तो क्या होगा? बोले ये आत्मघात होगा, यही आत्मघात होगा। इस आत्मघाती जन को संसार में कहां धकेला जाता है? असूरिया नाम ते लोका, उस अंधकार में जहां इंद्रियां हमेशा कष्ट ही पाती रहती है। इंद्रियों में बड़ा कष्ट है, शरीर में जो कष्ट का कारण है, इसीलिए इस शरीर को कहा दुखालयम, जहां अनेक प्रकार के दुख है। अंधकार जहां है, बोले वहां दुख है, अंधकार से अभिप्राय दुख। और दुख वही है जहां अविद्या है, अंधकार है, अविवेक है, अविचार है, और वहां अनेक प्रकार के कष्ट हैं। अनेक प्रकार के कष्टों में जन्म मरणादि का कष्ट है, भव का दुख है। ये भव दुख कूप जिसको कहा गया, भव कूप में जाकर, अंधेन तमसावर्द, अंधकार से भरे हुए उस कूप में जाकर धकेल दिया जाता है। माने ये हमारी कर्मेंद्रियां और हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया तो कहां धकेलेंगी, बोले अंधकार से भरे हुए कूप के अंदर, कुएं के अंदर जहां घोर अंधेरा हो, और उस कूप में पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम पुनरभि का जन्म मरण का चक्कर हमारे सामने चलता रहेगा। इसलिए कहा आत्मदर्शन करो, आत्मा रे दृष्टवा, बोले आत्मा का दर्शन करो। बोले आत्मदर्शन करो तो उसके लिए उपाय क्या है? श्रुतव्यम सुनो, मंतव्यम मनन करो, और नित्य ध्यासन करो।